نحمده ونصلي على رسول الله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير محسن انسانیت اس میں سے آج کل ہم غزوہ احد کو پڑھ رہے ہیں پیچھے ہم نے کافی ڈیٹیل سے دیکھا کہ احد سے سبق کیا ملتے ہیں اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے راستے کی بھاگ دوڑ کرنے والوں کو ضرور غزوہ احد سے فائدہ اٹھانا چاہیے آج ہم پڑھیں گے احد کے بعد کیا ہوا بہت اہم ٹاپک ہے یاد رکھیں جیسے بارش ہوتی ہے نا تو اس کے بعد بھی کچھ اثرات رہتے ہیں گرمی کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے بیماری کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے اسی طرح ہماری زندگی کی ہر کوشش اللہ کے راستے کی جد و جہد ہے اس کے بعد کے کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں مثلا اگر آج آپ اس کلاس میں آ کے بیٹھی ہیں تو آپ کا اس کلاس میں بیٹھنا ایک اپنی بات ہے لیکن اس کلاس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کدھر جاتے ہیں دن کے باقی حصے میں کیا کرتے ہیں یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے یعنی اثرات جو ہوتے ہیں نا یہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد تک بھی آپ کو پتہ ہے کہ باقی رہیں گے سورۃ یاسین آیت 12 میں کیا پڑھتے ہیں کہ ما قدم و آثار ہوں جو کچھ بھی آپ اور میں زندگی میں کر کرا رہے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ہمارے بعد بھی رہیں گی اور آثار کی وہ تین تفاسیر آپ کو یاد ہوں گی کہ ایفیکٹس اور اسی طرح سے ہماری اولاد اور اسی طرح سے آپ کے میرے جانے کے بعد جو اس جگہ پہ جو مہریں ثبت ہو رہی ہیں نا وہ بھی رہیں گی تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے لیے نیکیوں کی مہریں ثبت کر دے آپ روز جگہ بدل کے بیٹھا کریں کس سوچ کے ساتھ کہ آج اس کرسی پہ میری مہر لگی ہے کل دوسری پہ لگے آج زمین کے اس ٹکڑے پہ لگی ہے کل دوسرے پہ لگ جائے گی اس طریقے سے کر کرا کے آپ اور میں دیکھیں گے کہ قیامت کے دن کئی ایسی چیزیں ہوں گی کسی نیکی کو ہلکا نہ جانے احد کے وقت جب صحابہ کرام گھر سے نکلے تھے سچ بتائیں کہ ان کو پتہ تھا کہ اتنی بڑی نیکی بن جانی ہے اور جنہوں نے درہ چھوڑ دیا تھا کیا ان کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ اس کا اتنا برا ایفیکٹ پڑے گا کہ 70 ہمارے ساتھی پیارے یہ نہ کہ صحابہ ان کے دوست کسی کا چچا کسی کا ماموں کسی کا بھائی گے نا تو یاد رکھیے گا زندگی کا ایک اصول بنا لیں میری آپ کی ہر لغزش اور ہر اچھی چیز کا دوسروں پہ اثر ہوتا ہے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی غلطی نہیں ہوتی دوسرا آ کے پیچھے سے ٹکر مار جاتا ہے تو ہمیشہ انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے بھی نقصان اٹھاتا ہے تو زندگی کا اصول بنا لیں کہ ہم نے کیئر فل زندگی گزارنی ہے زندگی کے بعد آپ خود فیل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے خیر کا کام اگر لینا ہے تو لے گا تو آئیے تھوڑا سا بک میں پڑھتے ہیں 431 431. اب آپ دیکھیں کہ آپ اس وقت سارا سننے سے پہلے اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنائیں میں کھڑی تھی احد میں اللہ کے نبی نے مجھے درے پر متعین کیا عبداللہ بن جبیر میری ہی ساتھیوں میں سے ایک سسٹر تھی جن کو اوپر ذمہ دار بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی اور وہ ساری انسٹرکشنز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ دی تھیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو ملی آپ کا عمل کیا ہوتا چند لمحے کے لیے خود سے پوچھئے اگر میں اس درے پہ متعین کیے ہوئے صحابہ کی جگہ ہوتی تو میرا رد عمل کیا ہوتا اور پھر توبہ کریں دعا کریں کیونکہ دیکھیں وہ تو اتنی نیکیاں کر چکے تھے پھر بھی ان کی لغزش کے اوپر اتنا ریئیکشن ہوا تو میرے آپ کی تو نیکیوں کے کام بھی لغزشوں سے بھرے پڑے ہیں تو لہٰذا اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیوں سے بھی بچائے اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کے غلط اثرات سے بھی بچائے آئیے پڑھتے ہیں اگرچہ مسلم فوج نے احد میں پہلے فتح کا اور پھر عارضی ہزیمت کا دور دیکھا ہزیمت کیا ہوتی ہے ہزیمہ سے آپ یاد کریں قرآن میں آتا ہے دوسرے پارے کے بالکل اینڈ پہ ہزیمت یعنی شکست ہو جانا یا کمزور ہو جانا اور یاد رکھیں پھر اپنے لیے ایک جملہ نوٹ کریں میری آپ کی احد یہ دین کی بھاگ دوڑ ہے ہمارے درس ہمارے مینا بازار ہمارے ٹرپس ہمارا قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہمارا گروپس لینا ہمارا قرآن کے لیے اتنی محنتیں کرنا دوسروں کو انوائٹ کرنا درسوں کو ارینج کرنا ہم سب کی احد یہ ہے آپ نے میں نے جو مورلز لینے ہیں نا وہ اس جگہ اپلائی کرنے ہیں انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے حصے کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے اللہ کی نظروں میں اچھے بن سکتے ہیں لیکن آخر وقت میں انہی کے حق میں پلڑا جھکنے لگا تھا اس کو ہائی لائٹ کریں अमल की बात लिखें। जिन लोगों में खैर होती है ना, कभी कभी उनसे गलतियाँ भी होती हैं, इज्तिहादी सही सुस्ती भी हो जाती है। जैसे बनु सलमा और एक और कबीला अब्दुल्ला बिन उबई को और उसके साथियों को हटता देखकर थोड़ा सा कमज़ोर हुआ था। और फतह का एक अपना रंग होता है, शिकस्त का एक अपना रंग होता है। बहुत सारों के हौसले टूट जाते हैं जब नतीजे अच्छे नहीं निकलते। शिकस्त अपनी जगह खुद एक मोटिवेशन है, फ़र्क पड़ता है इंसान को। लेकिन जो बंदा फतह और शिकस्त से ऊपर उठ के ये सोचे कि मैंने तो कोशिश की, हाँ अपनी गलतियों को पहचानना चाहिए, अपने लूप होल्स को ढूंढना चाहिए, प्लानिंग फ्यूचर में करें तो उसमें क्या कमी बेशी थी, वक्त जगह का सही इस्तेमाल था नहीं, ये सब करें, लेकिन हिम्मत ना हारें। फतह देखकर आगे भागना और शिकस्त देखकर रुक जाना ये निफाक की अलामत है। मुनाफिक जिस तरह दुनिया के फायदे चाह रहा होता है ना, वो दुनिया में दीन के काम के भी फौरी नतायज देखना चाहता है। लेकिन ओहद ने ये दिखा दिया था कि अल्लाह ने आखिर में हक का पलड़ा झुकाया, ये है खूबसूरत बात। बीच में कमजोरी आ गई, कोई बात नहीं, आप दोबारा उभर जाइए, फिर खड़े हो जाइए, अल्लाह ताला दोबारा मदद करेगा आपकी। खुसूसन कुरैश का अपनी फतह को ना तमाम छोड़ के चल देना और मुस्लिम फौज का इनके ताकुब में निकलना और अबू सुफियान का एक बार फिर पलटने का इरादा करने के बाद मक्का को रवाना हो जाना, मुस्लिम फौज की हवा बंधने में मुमिद हुआ। मुमिद क्या उर्दू में बोलते हैं? मुमिदो मुआविन, वही है। रूट क्या होगा इस मुमिद? मीम दाल दाल, शाबाश, मदद, यानी मुमिद बिन मददगार साबित हुआ। दर हकीकत कुरैश इस जंग का कतई फैसला किए बगैर इसे मुअल्लक मुअल्लक अलका से, अलका क्या होता है? माँ के पेट में बच्चे की एक विध लटका हुआ, ठीक है, हैंगिंग। कुरान में कहीं और भी आता है मुअल्लक? कल मुअल्लका सूरत निसा के दूसरी बीवी से शादी की सूरत में पहली को लटकता हुआ ना छोड़ो, या किसी भी बीवी को इस तरह ना छोड़ दो कि ना वो बीवी हो ना बेवा हो, यानी ना वो आगे जाके शादी कर रही है और ना तुम उसके हक दे रहे हो, ठीक है। तो मुअल्लक यानी लटकती हुई छोड़कर चले जाना, यानी मुअल्लक हालत में छोड़कर चले गए थे। दोनों में कोई भी दूसरे का जोर तोड़ने में कामयाब ना रहा। आपने मैचिस की जुबान में एक लफ्ज़ सुना होगा ना, मैच ड्रॉ हो गया, वो क्या होता है? बराबर, ठीक है। तो ये जंग ड्रॉ हो गई, बराबर हो गई। हालांकि कुफर और इस्लाम का मुकाबला कभी बराबर हो के भी बराबर नहीं हुआ, लेकिन जाहिर नतायज नहीं निकले ये कह लें। ऐसी सूरत लाजिमन बाकी आइंदा का मफहूम रखती है। बाकी आइंदा का लफ्ज़ कहाँ होता है भला? आपने कभी किस्तवार कहानियाँ पढ़ी हैं, नावल स्टोरीज? पहले होती थी, अब तो पता नहीं किधर गया सब कुछ, हम सब टेलीफोन में घुस गया। लेकिन एक किस्त चलती थी, अभी पूरा हफ्ता इंतज़ार करते थे बाकी आइंदा। बच्चों का सफ़ा होता था, कल के अखबार में शायद आना होता था बाकी आइंदा, और वो जो ड्रामे चलते थे किस्तों बार बाकी आइंदा। तो बाकी आइंदा ये बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है यहाँ मेरे हिसाब से, कि ओहद के बाद के लिए बेस्ट सेंटेंस है कि ऐसी सूरत लाजिमन बाकी आइंदा का मफहूम रख दिए कि अभी कौन सा आखिरी जंग थी, अभी तो और बहुत कुछ होना है। और कुरैश की तरफ से तो अबू सुफियान साफ साफ चैलेंज दे गया कि अब आइंदा साल बदर में हम फिर टक्कर लेने आएंगे। बदर की जंग एक फैसला कुन नतीजा रखती थी, मगर ओहद का मार्का फैसला कुन ना हो सका। ये फैसला आइंदा के लिए मुअख्खर हो गया। मुअख्खर, अखरा युअख्खिरु ताहिर, यानी पोस्टपोन। बात वाज़ेह, यानी अभी ये जंग लटकेगी, अभी ये ख़त्म नहीं हुई। मुस्लिम ताकत अगर फातह नहीं थी तो बिला शक वो शिकस्त खुर्दा भी नहीं थी। इसको भी हाईलाइट करें, जैसे पीछे भी अर्ज़ किया था ना कि सिर्फ उहद में ही झटका आया, बाकी सारी जंगों में फतह हुई, तो ये झटका लाजमी था। लेकिन कुफर के आगे इस्लाम दब नहीं सकता, हार नहीं सकता, इसलिए अल्लाह के नबी के जरिए किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई। ये सिर्फ एक बाकी आइंदा की सूरत में रखने के लिए मुसलमानों को दिखा दिया कि फिर भी शिकस्त हो सकती है, चाहे तुम्हारे बीच में नबी क्यों नहीं मौजूद। तो ये एक सबक सिखाना था, वरना असल फतह किसकी है? हक की। लेकिन फिर भी बदर की फतह का जो असर इर्दो गिर्द के इलाकों में पड़ा था, इसमें कुछ ना कुछ कमी तो आई। ये भी होता, आप एक अच्छा काम कर ले, सब तरफ धाक पड़ जाएगी, सब मशहूर होंगे और मरूब होंगे, उसके बाद अगर ज़रा से कमज़ोर पड़े तो कहते हैं अमी वो फतह ऐसे ही थी बस, हैं असल में ऐसे ही। तो लिहाजा ऐसे ही चीज़ों का बुरा असर दूसरों को और ख़ास तौर पर जो हरीफ होते हैं ना, उनके हौसलों को बुलंद करते हैं। और कदामत पसंद कबाइल की उम्मीदें एक बार फिर कुरैश की जाहली कुव्वत से वाबस्ता होने लगी। इसको हाईलाइट करें, सोने के पानी से लिखने वाला जुमला। कदामत पसंद कौन होते हैं? रिवायती, ट्रेडिशनल। कुछ लोग ट्रेडिशनली इस्लाम में दाखिल हुए होते हैं। आप ये दीन का काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, इसमें भी कई लोग ट्रेडिशनली दाखिल हो जाते हैं। क्या करें, फारिग वक्त है, किधर जाए, इधर आके बैठ जाएंगे। चलो कुछ नहीं, सब कर रहे मैं भी कर देता हूँ, सब खाना लाते हैं मैं भी ले आता हूँ, सब पढ़ रहे मैं भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन उनका दिल नहीं होता आपके साथ। जब ऐसा कोई झटका आएगा वो फ़ौरन कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढ लेंगे। ये याद रखिएगा, जो दिल से आपका नहीं है वो कभी आपके साथ एंड तक नहीं चलेगा। वो अपनी सहूलत से बैठे फारिग थे आगे, आजकल हैं ठीक है। जो बंदा खुशी गम में भी किसी चीज़ को नहीं छोड़ता वो आपका है। जैसे हम आज तक अपने माँ बाप को छोड़ सके, बताएं? शौहरों को छोड़ते हैं? किस घर में ऊंच नीच नहीं है, कहाँ ज़िंदगी के नशेबो फराज नहीं, लेकिन हम खुश हैं। अल्लाह ना करे बीमारी आ जाए, शौहर बेड पे आ जाए तो बीवी छोड़ देती है। बीवी को कुछ हो जाए तो क्या मर्द उसको कहेगा चली जाओ वापस? ये दीन के साथ ताल्लुक़ रखें। खुशी गम, लोग अच्छा कहें, लोग बुरा कहें, आप कहेंगे कहते तो कह लो मैं तो यही हूँ, मैं तो खुद वो हूँ। अपना नाम रख लें कि मैं खुद ही ये हूँ, कर लो जो करना है। तो आप देखेंगे कि इससे फिर ना बहुत सारे फितने दब जाते हैं। और हर वक्त शक का शिकार होना और इधर उधर सोचना, ताका झाकी करना, ऐसे लोग याद रखें कभी एहसान के दर्जे पर नहीं पहुँचेंगे। सारी उम्र ट्रायल एंड एरर कर करके इधर से उधर लुढ़केंगे, लेकिन उनकी साख नहीं बनती। साहबा की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो इस्लाम के साथ जुड़ चुके थे, कोई चीज़ उनको उससे पीछे नहीं कर सकी। और आप देखिए ज़रा सी फतह कम हुई ना तो उन्होंने जाकर दोबारा अपनी पिछली दोस्तियां शुरू कर दी, जाहली कुव्वतों से वापस आएंगी। उनको लगा नहीं, हमारा ख्याल था इस्लाम बहुत उभरेगा लेकिन ये तो दब गया। ओहो, पहली जंग तो ऐसे ही इत्तफाकन जीत गए थे ना, अब ये दूसरी आ गई, अब इसको छोड़ें, चलो वापस चलते हैं उनके पास। फिर अगर हम मरेंगे तो क्या होगा, हमारा जनाजा कौन पढ़ाएगा, हमारे निकाह कौन कराएगा? नहीं, हम उधर ही ठीक है। ये दो कश्तियाँ मुजब्जबीन अबीन जालिका, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई। याद रखिए इस्लाम में आए तो पिछली सारी कश्तियाँ जला कर आए, तारक बिन ज़ियाद की तरह। बड़ी बात है कहने की, आप आए और आप सबके गाड़ियों के टायरों से वहाँ निकाल दीजिए, कम अज़ कम, कम अज़ कम कि चले आप जा ही नहीं सकते, गाड़ियों के टायरों में हवा नहीं है, फिर देखते हैं क्या होता है। और उन्होंने तो समंदरी सफ़र पे जा रहे हैं, कश्तियाँ जला दी कि इन्होंने कोई नहीं वापस आना। अल्लाह अकबर, ये कहना बड़ा आसान है लेकिन ये अमली ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है। जब दीन के लिए आए, पिछले गम फिक्र आजमाइशें छोड़ कर आए, फिर आएंगे। ये स्ट्रिंग्स पीछे लगी रहेंगी तो हर वक्त तो दिमाग उधर जाएगा, तो ये चीज़ फिर इंसान के काम में रुकावट बनती है। बस जरायम पेशा और शर पसंद अनासर में बगावत का रुझान भी उभर आया, चारों तरफ के नीम मुतासर। देखिए एक एक लफ्ज़ जो मैं बोलती हूँ ना, जिस पे ज़रा सा जोर दूँ उसको हाईलाइट कर लिया करें, मैं खुद भी कर रही होती हूँ साथ साथ अपनी बुक में। कैसे? नीम मुतासर, एक होता है मुतासर, एक है नीम मुतासर, समझ आ गई है? नीम मुतासर कबाइल बेबाकी से बाग़ियाना हरकत करने लगे। अल्लाह अकबर, गोया उहद के वक्ती असर से इस्लामी रियासत को शदीद पेचीदगियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जमात इतनी चाको चौबंद और क़्यादत इतनी मजबूत थी कि इसने शरारत की फौरी सरकूबी की और आहिस्ता आहिस्ता हालात के धारे को सही रुख पर डाल दिया गया। लोगों को महसूस करा दिया कि इस्लामी हुकूमत जान रखती है और लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने और अपने इलाके के तहफ्फुज़ करने के लिए कोई कोताही करने वाली नहीं। ताहम एक अच्छा खासा दौर इस्लामी रियासत के असर की बहाली में सर्फ हुआ। बात वाज़ेह, कम अज़ कम आपको मुझे इससे ये तो समझ आ रहा है ना कि मेरी एक की कमी बेशी से फ़र्क तो पड़ता है। देखिए आप पुलाव बनाते हैं और उसमें दार चीनी ना डालें, मिल फर्ज, और एक है जिसमें डाला है, जो बहुत सेंसिटिव टेस्ट कॉन्शियस है ना उनको पता लग जाएगा। और या फिर आप दालचीनी की 6-4 स्टिक्स डाल दें एक की बजाय, तो भी लगेगा कि चावल मीठे मीठे हैं। अच्छा, इसमें कोई मीठी मीठी खुशबू है, अच्छा दालचीनी ज़्यादा। हर चीज़ का असर होता है, कुछ डालें या निकालें, हर चीज़ में, आप पहनने ओढ़ने खाने पीने से लेकर हर चीज़ में देखें, चीज़ के होने या ना होने में फ़र्क तो होता है। बस आप अपने आप को लें, मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, फ़र्क तो पड़ेगा। और आप कहते हैं ना मेरे होने और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई और कर लेगा तो फिर उसका कौन करेगा? और दूसरी बात है, फिर जिसे ना पा चुके हैं तो फिर आप क्या करेंगे? बकौल बज़ों में खुद आपका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता करने आने ना आने से, बात बात है। और मैं तो कहती हूँ मुझे एक स्टूडेंट्स के ना आने से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे उसकी जगह याद आती रहती, यहाँ ये नहीं आज खैर हो, मेरा कई दफा दिमाग उधर जाता है, एक साथी ना हो मेरा दिल उसकी तरफ जला रहता है किधर, तो फर्क पड़ता है, हमें डायरेक्ट पढ़े या इनडायरेक्ट पढ़े। गोया के ओहद के वक्ती असर से इस्लामी रियासत को शदीद पेचीदगियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जमात इतनी चाको चौबंद और क़्यादत इतनी मजबूत थी कि इसने शरारत की फौरी सरकूबी की। सरकूबी क्या होती है? चल पड़े, ले चले, लीड किया, और आहिस्ता आहिस्ता हालात के धारे को सही रुख पर डाल लिया गया। लोगों को महसूस करा दिया कि इस्लामी हुकूमत जान रखती है और लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने और अपने इलाके का तहफ्फुज़ करने के लिए कोई कोताही करने वाली नहीं। ताहम एक अच्छा खासा दौर इस्लामी रियासत के असर की बहाली में सर्फ हुआ। क्या समझ आई? लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडर्स मांगिए। आप खुद बन जाए स्ट्रॉन्ग लीडर अगर आपको ना मिले कोई, बहुत बड़ी नेकी होती है। अगर आपके अंदर है एबिलिटी, नहीं है तो अल्लाह से कहें बन जाएगी। अगर आप सिंसियर हैं ना किसी कॉज से, तो आप खड़े हो जाएं हजरत यूसुफ की तरह कि इस वक्त इस मुल्क को मेरी ज़रूरत है। तमाशा नहीं देखा कि अच्छा बादशाह से नहीं चलेगा फिर मैं कुछ कहूँगा, देखा ना मैंने बताया नहीं। उन्होंने कहा लोग उस वक्त हुकूमतों के वजीर बनते हैं जब दौलत के खजाने लुटाए जा रहे हों, और हजरत यूसुफ ने उस वक्त खुद को पेश किया जबकि कहत आने वाला था। तो ये है वो बंदा जो अपनी कोशिशों से किसी डूबती नैया और कश्ती को बचाने की कोशिश करें। मुखालिफ रुझान रखने वाले जिन अनासर ने वाक़े ओहद के बाद सर उठाना शुरू किया, इनमें पहल कतन के तलहा बिन खुवैलद और सलमा बिन खुवैलद ने की। इन सरगनों ने बनी असद बिन खुजैमा को मदीना के खिलाफ बाकियाना इकदाम कर पर तैयार किया। सही तरीन नुक्ता नज़र गालिबन यही है कि प्रोग्राम एक तरह की मुसलह डाका जनी का था। मुहर्रम 4 हिजरी का चांद होने के साथ ही इत्तला मौसूल हुई अबू सलमा मखजूमी की सरकर्दगी में 150 आदमियों का दस्ता खतरे का इंसदाद करने के लिए भेजा गया। ये लफ्ज़ इंसदाद का रूट क्या होगा जी? और वो क्या होती है? सद, दीवार। शाबाश। इन फिर नून कहाँ से आ गया? इन फयाल, बाप बदल गया, यानी नून एक्स्ट्रा है, असल में सद था। रोकने से मुरादे के रोकने के लिए भेजा गया। ये लोग कतन पहुंचे तो मवेशियों का गल्ला छोड़कर डकैतों की टोली तितर बितर हो गई। मवेशी इस्लामी हुकूमत ने जब्त कर ली और रजाकारों में तकसीम कर दिए। बगैर किसी वक्फे के 5 मुहर्रम को एक और जानिब से खबर आई कि खालिद बिन सुफियान अल हजली ने हमला करने के लिए जमीयत इकट्ठी की है। अब्दुल्ला बिन उनैस जोहनी अंसारी को रवाना किया गया जो इस फितना घर का खात्मा करके इसका सर काट लाए। तन तनहा ऐसा बहादराना कारनामा अंजाम देने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा बतौर इनाम इनको अता फरमाया। सुभान अल्लाह। देखिए कि इससे पता चलता है कि जब कोई दूसरों से बढ़कर नेकी या कोई अच्छा काम करे तो फिर उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ठीक है। फिर 2-3 हफ्तों ही के वक्फे से एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। माह सफर के आगाज में कबीला अदल व कारा के लोग साजिश करके मदीना आए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हम में से कुछ लोग मुसलमान हो गए हैं, इनकी तालीम व तरबियत के लिए आप अपने मौलमीन भेजिए। 10 अहले इल्म का एक तालीमी वफद रवाना किया गया। क्या पता चला? अल्लाह के नबी के दौर में दावत और जंगों का सिलसिला साथ साथ चल रहा था और कभी भी आपने किसी की ऑफर को रिजेक्ट नहीं किया था, क्योंकि आपको पता था कि दीन इसी से फैलेगा। ये तादाद सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक है। सीरत निगारों ने वफद को 7 आदमियों पर मुश्तमिल करार दिया है, जिसके अमीर मरसद बिन अबिल मरसद थे। मुकाम रजी ये बनु हुजैल का घाट था। इसमें पहुंचकर साजिशियों ने बजुज खुबैब और जैद के बाकी सबको तहे तेह कर दिया। तहे तेह क्या होता? तलवारों के नीचे। इन दोनों को कुरैश मक्का के हाथ बेच दिया, जिन्होंने दोनों को सलीब देकर शहीद कर दिया, सूली पे चढ़ा दिया। इसका तस्करा पीछे हो चुका है। इस वाक्य से खूब अंदाज़ा हो सकता है कि जंगे उहद के बाद मुखालिफ अनासर में कैसी कैसी जसारतें उभर आई थी। इस सानहे ने नबी सल्लम के दिल को इस कदर सदमा पहुंचाया होगा, जबकि आपकी कलीलुल तादाद जमात के मुतद्दद कीमती अफराद तालीमी मिशन पर जाते जाते बेबसी के आलम में शहीद हो गए। ये नौरानी हस्ती इल्म की शुआएं फैलाकर जिन लोगों को बगैर किसी मुआवजे के نئی زندگی دینا چاہتی تھیں، ان ظالموں نے ان سے فائدہ لیے بغیر، یعنی استفادہ سمجھ ہے نا، فائدہ حاصل کیے بغیر ان کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے. کتنا بڑا صدمہ، کوئی دھوکے سے بلائے درس کے لیے اور قتل کر دے، کتنا بڑا اسلام کی کہلیں کہ پشت میں خنجر کھوپنے کے برابر ہو سکتی ہے یہ بات. لیکن اسی مہینے میں اس سے بڑا حادثہ بیر معونہ کا پیش آیا. ابو برا عامر بن مالک علاقہ نجد سے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے نہ اسے قبول کیا نہ رد، البتہ بڑے مخلصانہ انداز سے مشورہ دیا کہ آپ اپنے رفقا کو نجد روانہ فرمائیں، امید ہے کہ لوگ اسلام کے پیغام کو قبول کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے بارے میں اندیشہ ظاہر کیا، واقعہ رجی تو سامنے تھا ہی، ابو برا نے حفاظت کی ذمہ داری لی. چونکہ بعض سیاسی ضرورتیں اس بات کا تقاضا کرتی تھیں کہ نجد کے علاقے میں اسلامی حکومت کا اثر پھیلے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو برا کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے 70 آدمیوں کی ایک جمعیت، یہ تعداد بھی صحیح بخاری ہی کے مطابق ہے، ابن اسحاق کہتے ہیں 40 تھے، جن میں اول درجے کے حفاظ، قاری اور معلم و دائی شامل تھے. نوٹ کریں نا، کس کو بھیجیں گے اللہ کے نبی؟ جو ٹیم کے سب سے چنے ہوئے لوگ ہوں گے، کیونکہ وہاں انہوں نے ایک نیا کام شروع کرنا تھا. منظر بن عمر کی عمارت میں روانہ کی. یہ دعوتی وفد جب بیر معاونہ پہنچا، جو عرض بنی عامر اور حرہ بن سلیم کے درمیان واقع ہے، تو وہاں سے حرام بن ملحان رسول اللہ کا خط لے کر عامر بن طفیل کی طرف روانہ ہوئے. اس نے خط دیکھنے سے پہلے ہی اپنے آدمی کو اشارہ کر کے انہیں قتل کرا دیا. اس کے بعد اس نے بنی عامر میں اعلان کیا کہ مدینہ کے وفد پر حملہ کرنے کو نکلو. بنو عامر نے ابو برا کی ضمانت کا احترام توڑنا گوارا نہ کیا. تب اس مفسد نے بنی سلیم کی شاخوں، یعنی رال، ذکوان، اسیہ اور بنی لحیان کو دعوت دی. یہ لوگ تیار ہو گئے اور مدینہ کے دعوتی وفد کو آ کر گھیر لیا. وفد کی طرف سے کہا گیا کہ ہم لوگ لڑنے نہیں آئے اور ہمیں یہاں ٹھہرنا بھی نہیں، بلکہ آگے جانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ تعارض نہ کرو. تعارض کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کیا ہوتا ہے؟ اعراض، یعنی مراد ہے کہ ہمارا راستے میں نہ ہو. لیکن وہ ظالم نہ مانے اور 69 افراد تہ تہ کر دی، یعنی 69 افراد کو قتل کر دیا. 70ویں رکن وفد کعب بن زید بھی لہو لہان ہو کر لاشوں کے ڈھیر میں شامل ہو گئے، لیکن زندگی باقی تھی. بچ کر مدینہ پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا. مخالفتوں سے گھری ہوئی ایک نوخیز جماعت کی اس آزمائش کا اندازہ کیجئے کہ اس کی 69 قابل شخصیتیں انتہائی بے رحمی سے یکبارگی شہید ہو جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب حساس اس واقعے سے بے حد دکھا. آپ نے دکھے ہوئے دل کے ساتھ ایک مہینہ تک نماز فجر میں اپنے معلمین کے قاتلوں کے حق میں بد دعا کی. اس بد دعا کا اصطلاحی نام قنوت نازلہ ہے. کتنا بڑا صدمہ ہوگا، آپ سوچیں کوئی ایک چلا جاتا ہے نا اپنے لوگوں میں سے تو کئی سال تک بھولتا ہی نہیں ہے، جب بات کریں انہی کا نام ذہن پہ آتا ہے. تو کہاں ایک دن میں 70 لوگ، کتنا بڑا صدمہ تھا. یہ بتائیے کہ اتنی تکلیفوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے بعد ڈپریشن میں کیوں نہیں چلے گئے؟ ہمیں تو ایک جملہ بولنا چاہیے تھا، احد کے بعد اللہ کے نبی ڈپریشن میں چلے گئے، ابو بکر اور علی بھی، اور صحابہ کرام بہت ڈپریش ہو گئے، رنکس ہو گیا اور بہت ہی وہ دنیا سے ہار گئے. کیا ان کے اندر جذبات نہیں تھے؟ یاد رکھیے، جتنا ایمان زیادہ نا اتنا دنیا بھی صدمے اور تکلیفیں اور خاص طور پہ دین کے کاموں کی مخالفتیں آپ کے حوصلے بلند کرتی ہیں نہ کہ کم کرتی ہیں. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا کے اوقاف، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو مشکلات اور آزمائشیں ہمارے جسم کو گرم رکھتی ہیں، تو ہمیشہ اپنے ایمان کو چیک کرتے رہنا چاہیے. یہ جو مرض ہے نا فلاں فلاں جو میں نے ابھی بولے، یہ مسلمانوں کے مرض نہیں ہے، اور ایمان والا ڈپریس نہیں ہو سکتا الا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی آزمائش کر رہا ہے. تو ہمیشہ اللہ کے اوپر نظریں لگائیں. ان ظالموں کے رویے کے مقابلے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل عمر بن امیہ کے واقعے میں دیکھیے. عمر بن امیہ نے کہیں سے سنا کہ معلمین کی جماعت کو بیر معاونہ کے قریب سازشی دشمن اسلام قبائل نے تہ تہ کر دیا، جس میں عمر بن امیہ کے رشتہ دار بھی شامل تھے. انہوں نے راستے میں معلمین کے قاتل گروہ کے دو افراد کو سوتے ہوئے دیکھا اور انتقاماً قتل کر دیا. دراصل یہ لوگ حلیف قبیلے کے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون بہادا کیا. آخر وہاں کے ظلم انگیز نراج، نراج کیا ہوتا ہے؟ سسٹم، یعنی جو اس دور کا رواج تھا یہ کہہ لیں، इसके मुकाबले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी निज़ाम अदल के लिए सारे जतन कर रहे थे। इन बैरूनी हालात की इस्लाह बग़ैर इसके मुमकिन न थी कि मदीना दाखिली तौर पर मुस्तहकम रहे, मगर यहाँ शर अंगेज़ अनासिर मौजूद थे। वो अपनी दौलत, ज़मीन और कला बंदियों के बल पर खासा दमखम रखते थे और इस्लामी रियासत के ऐन कल्ब में बैठ कर इंतहाई गद्दाराना साजिशें करते और मुस्लिम जमात के हर इकदाम में रखना अंदाजी करते थे। खुसूसन यहूदी कबाइल वहदत थे मदीना के माहदे में शरीक होने के बावजूद आए दिन बागियाना हरकत करते थे। इनमें से बनु नज़ीर का गढ़ बड़ा मजबूत था और वह इनाद और सरकशी की राह पर सरपट बढ़े जा रहे थे। उन्होंने उहद और वाकया रची और बैर माउना के सानहे के बाद नाजुक तरीन हंगामी हालत में नबी सल्लम के कत्ल के लिए खुल्लम खुला इकदाम किया। पिछली हरकत के बाद ये खुल्लम खुला इकदाम इस अमर के लिए काफ़ी था, बल्कि ज़रूरी था कि इनके बारे में कोई फैसला कुन कार्रवाई की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग छेड़ने और कोई जानी नुकसान पहुंचाने से बचना चाहा। इसे क्या पता चलता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिजाज से और इस्लाम की तहरीक अपने मिजाज से जंग पसंद नहीं है, हर बात पे लड़ना नहीं चाहते, या वो खून के प्यासे नहीं थे। इसके अलावा मामला दुनिया के एक मुस्तकिल मजहबी गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का था। मुसलमानों को और सहाबा को बहरहाल इस गिरोह के दायरे में काम करना था, वरना उनके जरायम तो ऐसे थे कि उनको जीने का हक भी ना दिया जाता। फिर भी देखिए, अल्लाह के नबी ने नहीं किया। आपका मेरा अमल क्या है? फतवों से बचें। हर वक्त लोगों को मुनाफिक, काफिर और जहन्नमी कहना ये दुरुस्त तरीका नहीं है। इसलिए फ़क्त सलब शहरीत का नोटिस दिया। सलब शहरीत क्या होती है? क्या आपसे हम पासपोर्ट वापस ले लेते हैं? कि वह 10 रोज़ के अंदर अंदर पुरमन तरीके से हदूद मदीना से निकल जाएं। किनके साथ हुआ था ये? यहूद, बनु नज़ीर। वरना फिर इनके साथ दुश्मन का सा मामला किया जाएगा। अब्दुल्ला बिन उबई ने भारी मदद देने का वादा करके इन्हें नबी सल्लम के ख़िलाफ़ लड़ने पर उकसाया। बनु नज़ीर इसके भर्रे में आ गए और इस्लामी रियासत को उन्होंने साफ साफ चैलेंज कर दिया कि नोटिस की हम तामील नहीं करते, जो चाहो कर लो। रबीउल अव्वल 4 हिजरी में नबी सल्लम इस्लामी फ़ौज को लेकर निकले और बनु नज़ीर को मुहासरे में ले लिया। कोई भी इनकी मदद को ना आया, लिहाजा बेबस होकर उन्होंने बस्ती खाली कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीमाना शान थी कि न सिर्फ जाने बल्कि ऊँटों पर अपने कीमती अम्वाल भी वो लोग लाद कर ले गए। सोचें क्या मंजर होगा। आप देखिए कि उनको कहा गया था कि हर बंदा अपने ऊँट पे जितना सामान लाद सकता ले जाए। कभी है कोई ऐसा दुश्मन जो आपको इतनी इजाज़त दे दे? और पूरी सूरह हशर इनके बारे में कि जाते जाते घरों के दरवाजे और कील तक उखेड़ के ले गए। अल्लाह अकबर। खिंचाव के इस इंतहाई नाखुशगवार माहौल में भी बनु नज़ीर के अंदर से 2 सईद रूहें ऐसी निकली जिन्होंने अपने कबीले की नामाकूलियत के साथ साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक के नूर को पहचाना और हलका इस्लामी में शिरकत की। ये थे यामीन बिन उमैर और अबू साद बिन वहब। इस मौके पर मुस्लिम फौज को चंद दरख्त काटने पड़े और ये कोई अहम बात ना थी क्योंकि रास्ते में आ रहे थे, रुकावट थी। लेकिन मगरबी नुक्ता तराजों ने इसमें से भी प्रोपेगंडे का मवाद निकाल लिया। ये बिल्कुल ऐसा ही नागुजीर, नागुजीर किसको कहते हैं? जिससे भाग ना सके। गजीर ये फारसी का लफ्ज़ है और ना मैंने यानी इसके बगैर चारा ही नहीं है। जैसा आज भी किसी फौज को रास्ता बनाने, दुश्मन की कमीन गाहों को ख़त्म करने और दूसरी ज़रूरियात के लिए करना पड़ता है, बल्कि पुलिस को भी मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए बसा औकात इस तरह की कार्रवाइयाँ अमल में लानी पड़ती हैं। इमारतें गिरा दी जाती हैं, खेतों और बागों में हसब ज़रूरत तसरुफ किया जाता है। आज भी ऐसे ना, देखिए दरख्तों के कटने पर इतना शोर, तो जो इंसानों को गजर मुली की तरह काटा जाता है, आज भी इस्लाम के साथ यही हो रहा है। ज़रा सी बात पे शोशे शोशे और ख़ुद चाहे कुछ भी करते रहे। ख़तरनाक तरीन हालात के बावजूद शर पसंद अनासिर की सरकूबी करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ अपनी मुश्किलात घिटा ली बल्कि आसपास के लोगों पर यह असर भी बहाल कर लिया कि मुस्लिम हुकूमत में पूरा पूरा दमखम मौजूद है। अबू सुफियान मैदान उहद के ऐलान के मुताबिक 2000 प्यादों, प्यादों क्या? पैदल चलने वाले, और 50 सवारों पर मुश्तमिल एक मजबूत लश्कर लेकर हमले के लिए निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इत्तला पाते ही 1500 पैदल और 10 सवारों के साथ بدر پہنچے. 8 روز وہیں کیمپ ڈال کر قریش کی فوج کا انتظار کیا, مگر ابو سفیان مکہ سے ایک منزل دوری پر بمقام زہران یا اسفان آ کر واپس چلا گیا کہ خشک سالی کی وجہ سے یہ سال جنگ کے لیے مناسب نہیں. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو سفیان کی واپسی کی اطلاع پا کر مدینہ تشریف لے آئے. محرم 4 ہجری بعض روایت کی روح سے جمادی الاولی میں بنی غطفان کے ذیلی قبائل بنی محارف اور بنی سالبہ کی جنگی تیاریوں کی اطلاع آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 400 بعض روایت کے مطابق 700 رضاکاروں کی جمعیت لے کر نکلے. مقابلے کے لیے ایک جمعیت واقعی موجود تھی لیکن وہ عملاً معرکہ آرا نہ ہو سکی. اسی مقام کا واقعہ ہے کہ غورث نامی مشرک اپنی قوم کے سامنے یزم بیان کر کے نکلا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے رہوں گا. وہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں تنہا استراحت فرما رہے تھے. استراحت راحت سے آرام فرمانا. آپ کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی. غورث نے وہی تلوار تان کر للکارا کہ بتاؤ اب کون تمہیں بچا سکتا ہے. مانی یان کیزو کا منی, کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے خوف ہو کر کہا کہ اللہ ہو, اللہ مجھے بچائے گا. اتنا اس پہ خوف طاری ہوا اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. پھر اللہ کے نبی نے وہ تلوار اٹھا کر کہا اب تو بتا کہ اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مسلمان تو نہیں تھا نا, آپ مجھے بچائیں گے. کہا نہیں, مجھ سے تجھے بھی اللہ ہی بچائے گا. کتنا واضح عقیدہ تھا. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اسی طرح دومت الجندل جو ایک جگہ کا نام ہے, تجارتی کاروانوں کا جنکشن بھی تھا. یعنی وہاں قافلے آتے اور جاتے تھے, جڑتے. جنکشن کیا ہوتا ہے؟ دو ٹرینیں ملتی ہیں نا, یعنی جیسے وہ ٹرانزٹ ہوتے ہیں لوگ, یہ کہہ لیں. اور یہاں عیسائیوں اور یہودیوں کے مذہبی مبلغ اور سیاسی گماشتے بھی کام کرتے تھے. یہ گماشتے کیا بھائی؟ روٹ کیا ہوگا؟ چلیں یہ آپ کا ہوم ورک ہے, اس کو ڈھونڈ کے لانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. پھر بنو نذیر کے خیبر وغیرہ میں جانے کی وجہ سے ان کی مدینہ کے خلاف ریشہ دوانیوں کا بھی اڈہ بننے لگا تھا. خصوصاً یہ واقعہ بڑی سیاسی اہمیت رکھتا ہے کہ قریش مکہ اور یہود خیبر کی ساز باز کے زیر عنصر نصرانی سردار عقیدر اس کا نام تھا, یہ دومت الجندل کا رئیس تھا. اس نے مدینہ کے لیے غلہ لانے والے کاروانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی کہ دومت الجندل میں دشمن اپنی فوج اپنی طاقت جمع کر کے مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے. ربیع الاول 5 ہجری میں آپ نے 1000 کی جمعیت لے کر فوراً اقدام کیا. دومت الجندل میں جب مسلم فوج کی روانگی کی اطلاع پہنچی تو دشمن بکھر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کی ضرورت نہ سمجھی اور راستے میں حلیفانہ تعلقات بڑھانے کا کام کیا. چنانچہ عیینہ بن حسن سے معاہدہ ہوا. بعد میں سن 6 ہجری میں عبد الرحمن بن عوف ایک دعوتی اور سیاسی مہم لے کے گئے اور قبیلہ کلب کی فضا مدینہ کے حق میں سازگار ہونے لگی. اس کے بعد بھی تبوک کی مہم کے سلسلے میں 9 ہجری اس علاقے پر پورا پورا غلبہ ہو گیا. کتنے سال لگے؟ دیکھیے احد 2 ہجری, 7 سال میں. یعنی یہ اثرات ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو کسی پل چین نہیں ہے, آزمائے جا رہے ہیں ہر جگہ. اب بنو مستلق کے بارے میں خبر آئی کہ وہ حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں. بریدہ اسلمی کو بھیج کر تحقیقات کرائی گئیں. خبر صحیح نکلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شعبان 5 ہجری کو فوجی اقدام کیا. نہایت تیز رفتاری سے مرسی یعنی پانی کا چشمے پہ جا پہنچے. حارث بن ابی درار سردار بنی مستلق آمادہ جنگ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یکا یک جا پہنچنے سے اس کی سپاہ بکھر گئی. سپاہ کیا ہوتی ہے؟ فوج. اور صرف اسی کے قبیلے کے لوگ باقی رہے. پہلے ہی حلے میں حارث کے جتھے کو پوری طرح شکست ہو گئی. بکثرت مویشی مال غنیمت میں آئے اور ساری تعداد جنگی قیدی بن گئی. گرفتار شدگان میں جویریہ بھی تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ حق پکارا اور کہا کہ میں اسلام لا کر حاضر ہوئی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رضامندی سے انہیں اپنے نکاح میں لے لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے تمام قیدیوں کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو اب ہم اسیر نہیں رکھ سکتے. جی اسیر کیا ہوتا ہے؟ شاباش. قرآن میں ہے بولا اسارا, اسیر کی جمع, سورت بقرہ شروع میں ہی ہے. قیدیوں کو آزاد کروا لیتے تھے, ٹھیک ہے. यही वो मौका है। अच्छा, ये लफ्ज़ भी सीर पे अब दिल करे सोचो, सुभान अल्लज़ी असरा। असरा क्या होता है? रात को जाना कहीं, हाँ, तो असीर फिर कैदी कैसे हो गया? यानी सिर्फ मैं आपको साउंड बता रही हूँ, असरा जाना और असीर नहीं जाना, फाइल का बदन है अरबी में, सल्ब पढ़ाया जाता है कई जगहों में, यानी सेम रूट है, सेम है, साउंड फर्क है, तो मानी बदल गए। सुभान अल्लाह, कोई जुबान ऐसी नहीं हो सकती। यही वो मौका है कि इस्लाम की फतह को देकर मुनाफिकीन जल उठे, और पहले उन्होंने पानी पर झगड़ा खड़ा करके मुहाजरीन और अंसार को लड़ाना चाहा, और वापसी में सारे रास्ते मुहाजरीन को मदीना से निकलवाने के लिए अंसार को इश्तियाल दिलाने में लगे रहे। इश्तियाल क्या रूट होगा? शोला, शोले, इश्तियाल, बाब इफ्तियाल है, ता एक्स्ट्रा इसकी। इसी सफर में हजरत आयशा के काफिले से बिछड़ जाने की बिना पर मुनाफिकीन को इफ्क का तूफान उठाने का मौका मिला। ये पीछे सब बातें हो चुकी हैं, यानी जंगों में भी फितने उठाते रहते थे। जंगे उहद के बाद और मार के खंदक से पहले ये छोटी छोटी कार्रवाइयाँ थीं जो इस्लामी रियासत को अपने तहफ्फुज़, लॉ एंड ऑर्डर की बहाली और दस्तूरी निज़ाम के बचाव के लिए करनी पड़ी। इनमें से मुअल्लिमीन के वफूद के वाक़यात को छोड़कर बकिया सूरतों में या तो महज सरहद पर फौजी ताकत भेजी गई या एक नौ की पुलिस कार्रवाई की गई। खालिस जंगी नौयत की झड़पें बहुत कम थी और वो भी बिल्कुल छोटी छोटी। इनको ख्वामख्वाह अहमियत देकर तफसील से बयान किया जाए तो पढ़ने वाले को मुगालता होता है। असल सूरत हाल ये थी, इसको लिख लें बस, बाकी सब का खुलासा अब यहाँ पे ये टॉपिक क्लोज हो रहा है। क्या अरब कबाइल की छोटी छोटी टुकड़ियों में मुनकसिम यानी तकसीम था, और हर कबीला बल्कि कबीलों की जेली शाखें, जेली सब जो उनके अंडर थी, अपनी अपनी जगह मुस्तकिल तंजीमी और सियासी यूनिट थी। कभी एक टोली मुखालफत के लिए सर उठाती, कभी दूसरे हमले या डाके के लिए तैयार हो जाती। एक शरारत पर काबू पाया जाता तो किसी और तरफ से फितना उठ खड़ा होता। ऐसी हालत में जब भी कभी एक मरकजी नज्म कायम करने की कोशिश की जाती तो बिखरे हुए मुख्तलिफ कबीलों के साथ बार बार छोटी छोटी झड़पें लिए बगैर कभी कामयाबी का कोई इम्कान ही ना था। खुलासा क्या निकला सारी बात का? कि ओहद के बाद मुसलमानों को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और अल्लाह के नबी सल्लम की मजबूत लीडरशिप यानी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी, जो आपकी मजबूत क़यादत थी, आपकी कायदाना सलाहियतें थी, आहिस्ता आहिस्ता वो उम्मत को उस असर से निकाल लेके आ गई। सहाबा का मोरल बुलंद हुआ, कुरान में आयतें आ गईं कि शाबिर हम फिल अमरी, अल्लाह के नबी आप इनको काटिएगा नहीं, इनसे मशवरे लीजिए, कोई बात नहीं अगर इनसे गलती हो गई तो क्या हुआ। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ दुश्मनों की आंखों में आंखें डाली। देखिए, ओहद के फौरन बाद निकल जाना हमरुल असद के लिए, ये लीडर के सिवा कोई नहीं कर सकता। मैं चैलेंज कर सकती हूँ, लीडर में जुरत होती है। साथियों में फॉलोअर्स ऐसे मौक़ों पे कहेंगे, लो पहले मज़ा नहीं चख लिया, कल का दिन नहीं याद, कल 70 मारे हैं, बाकी भी मरवाने हैं। ऐसे वक्त में फिर वो दिल का निफाक भी उभरता है, और जो कच्ची पक्की जमात है ना वो पीछे होती है। याद रखिए, अपने आप को इस जगह पे, अगर अल्लाह ने आपको किसी काम पे एक ऐसी जगह पे रखा है कि आपकी यस यस है तो नो नो है, हर जगह होता है, एक सफर में भी तीन में से एक को अमीर बना लिया जाता है ना, तो इससे मतलब लीडर से वो सियासी लीडर नहीं है जो हमारे जहन में आ जाते हैं। हैं हम सारे अल्लाह के आगे खादिम, खिदमत करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें मौका दे दिया तो फिर उसके लिए आपको मुझे अपने लिए ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह मैं जम जाऊँ, सारी टीम एक साइड पे, मैं हक पे हूँ। जैसे अबू बकर सिद्दीक, कुछ मौके ऐसे भी है कि अकेले रह गए अल्लाह के नबी के बाद। किस चीज़ में अकेले रह गए? फैसले में, राय में, यानी अबू बकर की जो राय थी बाकी सारी टीम की राय फर्क थी। तो क्या किया कि नहीं मैं रुका, अल्लाह के नबी के दौर में अगर कोई तिनके बराबर भी ज़कात देता था और अब इनकार करेगा तो मैं उससे जिहाद करूँगा। तो कहने का मतलब कि स्ट्रॉन्ग नर्व्स चाहिए, लीडर बनना आसान नहीं है लेकिन जब बन जाए तो दर्जे बहुत हैं, और अल्लाह ने बनाने हैं। तो अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। ये बहुत ही इमोशनल गजवा था। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक।